Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामे प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागो यः सहौजो मयि प्राणापानौ जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदय शमनिषो वातितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुंसस्तनोभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की। तो हम लोग भगवान की अहेतुकी अनुकंपा से स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज का स्वर्ण निर्माण महोत्सव मना रहे हैं, जिसकी उपलक्ष्य में स्वाध्याय प्रवचन भागवत कथा इत्यादि का समायोजन चल रहा है। निर्माण से निर्माण की तरफ कैसे बढ़ना, यही प्रत्येक प्राणी के जीवन का लक्ष्य होता है। चाहे आध्यात्मिक शरीर का निर्माण हो या भौतिक जो मकान दुकान का निर्माण हो, तो यहां पर जो प्रसंग चल रहा है अकांड ब्रह्मांड। अकांड शब्द का अर्थ होता है असमय में, ब्रह्मांड मतलब कि 14 भुवन। 14 भुवन भी अर्थ है त्रैलोक भी। 14 का अर्थ है 7 नीचे और 7 ऊपर। नीचे के आपके हैं अतल बीतल सूतल तलातल महाताल पाताल, और ऊपर के भूलोक भूवलोक भू, तो इस पर हम लोग बैठे हुए हैं। भुआ स्वह मह जन तप सत्यम। तो भूर भुवा स्व, स्व तो स्वर्ग लोक है देवताओं का, और आगे जो मह जन तप सत्यम है, ये 4 लोक ब्रह्म लोक के अंतर्गत आते हैं। तो 14 लोक को कहते हैं ब्रह्मांड। जिस प्रकार से किसान पहले खेत में हल चलाता है, हल चलाने के बाद सफाई करता है, सफाई करने के बाद बीज डालता है, बीज डालने के बाद जब विस्तार होता है तो उसकी सुरक्षा देखरेख करता है, जल का सिंचन करता है, और 4 महीने के बाद पुनः जब धान गेहूं पक जाते हैं तो वही किसान जिसने कि बीज डालकर उसको बोया, बपन किया, पालन किया, सुरक्षा किया, 4 महीने के बाद पुनः उपसंहार करता है। यदि वह किसान उपसंहार न करे तो अनाज सड़ जाएंगे, न उसके काम आएंगे, न किसी दूसरे काम आएंगे, नष्ट हो जाएंगे, गंदगी फैलेगी, महामारी फैल सकती है। तो समय से यदि बीज का वपन हो, उसका रक्षा हो, पालन हो हिंसक पशुओं से, और फिर पकने के बाद जब कटाई हो तो उचित कहते हैं, उसका सदुपयोग होता है। इसी प्रकार से यह जो ब्रह्मांड है इसके एक निर्माण का काल होता है, दूसरा है पालन काल, रक्षा काल, तीसरा है उपसंहार काल। 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद उपसंहार का समय आता है, ये पूरा ब्रह्मांड पक जाता है। समझो कठोपनिषद में जब नचकेता को उनके पिता ने आवेश में कह दिया कि मृत्यवे त्वाम ददामी, बार बार नचकेता पूछता तत्त कस्मै माम दासशि, हे तात आप मुझको किसको देंगे, बूढ़ी बूढ़ी गायों को तो ब्राह्मणों को साधुओं को दे रहे हैं, पर आप मुझको किसे देंगे। जब बालक बार बार जिद किया तो आवेश में आने के बाद नचकेता के पिता गौतम कहते हैं कि मृत्यवे त्वा ददामि, मृत्यु को मौत को देता। जब ऐसा आवेश में कह दिया तो जब नचकेता जाने लगे तो पिताजी बहुत दुखी हो गए, तो पिता को वहां पर एक दृष्टांत देके नचकेता ने समझाया, शस्मीव मर्त्यः जायन्ते पच्यन्ते च। शस्य बोलते अनाज को, धान को, जैसे अनाज समय से वपन होता है, पालित होता है, रक्षित होता है, बाद में नष्ट हो जाता है, ऐसे ये ब्रह्मांड समय से उत्पन्न हुआ, पालन हुआ, विस्तार हुआ, श्रृंगार हुआ, इसके बाद में पुनः इसका उपसंहार। तो यहां पर अकांड ब्रह्मांड क्षय को देख करके जब देखा यहां पर देवताओं ने, असुरों ने, कि असमय में ही ब्रह्मांड का क्षय होने जा रहा है, ब्रह्मांड के उपसंहार का समय निर्धारण किया है 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद महाप्रलय होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, कल्पना कर लो 43,43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी कहलाता है, उसमें 1000 का गुणा कर दो, उतने दिन के बाद महाप्रलय होता है, महाप्रलय का समय आता है। परंतु यहां पर महाप्रलय के पहले ही अचानक जब देवताओं ने, असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो हलाहल विष निकला, हलाहल विष निकलने के बाद सभी घबराए, देवता लोग पहले इंद्र के पास गए बचाओ बचाओ, असुर सम्राट बलि के पास गए बचाओ, बलि ने कहा कि मैं भी नहीं बचा सकता, इंद्र ने कहा मैं भी नहीं बचा सकता। बलि और इंद्र मिलकर भगवान विष्णु के पास आए, बोले कि रक्षा मंत्रालय आपके पास है, जैसे रक्षा मंत्री हमारे देश में होते हैं ना, आप ही रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कि इससे तो मैं भी रक्षा नहीं कर सकता हूं, चलो हम सभी चलते हैं महादेव के पास। देखो भगवान विष्णु की उपासक देवता और मनुष्य है, कुछ गिने चुने असुर भी हैं, प्रहलाद इत्यादि बहुत कम, पर भगवान शंकर के उपासक सभी हैं, असुर भी हैं, दैत्य भी, दानव भी, मानव भी, निष्पक्ष सभी उपासना करते हैं। जब भगवान शंकर के पास गए कैलाश, तब जाकर भगवान शंकर ने उस हलाहल विष का समन किया, समाधान किया। इसके बाद क्रम से ऐरावत, उच्चैःस्रवा, कस्तुभमणि, लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, वारुणी भी उत्पन्न हुआ, फिर अंत में अमृत कलश उत्पन्न हुआ। तो हमारे जीवन में भी ये मंथन चल रहा है, वहां पर तो देवता और असुर मिलकर मंथन किए, परंतु उसका अधिष्ठान भगवान विष्णु ही थे। वेदांत का सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वोच्च ग्रंथ, अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खाद्य और चित्त सुखी, ये तीनों उच्चतम ग्रंथ माने जाते हैं। तो अद्वैत सिद्धिकार ने मंगलाचरण में वहां विष्णु भगवान को नमस्कार किया है, और विष्णु का अर्थ किया है व्यापक चैतन्य, यह जीव है, व्यापक चैतन्य है, यही समझो कि विष्णु है, क्योंकि विश्ली व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द की निष्पत्ति होती है, वहां विष्णु शब्द का साक्षात ब्रह्म अर्थ किया, आत्मार्थ किया है, और वहां पर उसी तत्व को अद्वैत सिद्धिकार ने नमन किया है। तो यहां पर भी देवासुर जब मिल करके क्षीर सागर का मंथन करते हैं, तो भगवान विष्णु हर जगह अधिष्ठान बनते हैं। सर्वप्रथम जब मंदराचल को लाने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी जब देवताओं ससुरों से नहीं उठा, तो भगवान विष्णु उठा करके गरुड़ पर लेकर के आते हैं। जब समुद्र में डाला, मंथन प्रारंभ हुआ, तो मंदराचल नीचे जाने लगा, भगवान विष्णु कच्छ बन करके अपने पीठ पर धारण किए। जब देवासुर मंथन करने लगे, मंथन करते करते थक गए, बेहोश हो गए, उस समय भगवान विष्णु स्वयं ही चतुर्भुज हो करके मंथन प्रारंभ किए, तब जाकर के अमृत सिंधित हुआ। तो यहां पर भी हमारे जीवन में मंथन चल रहा है। देव शब्द का अर्थ है द्योतनात देवाहा, ये प्रकाश स्वरूप देवता है, और असुर है अंधकार में। ईशावास्य जो अथर्वेदीय उपनिषद है उसके तीसरे मंत्र में आता है, असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता, तांस्ति प्रेत भी गच्छन्ति एके चात्म हनोजनहा। तो आसुर अंधकार के प्रतीक हैं, दैव प्रकाश के प्रतीक हैं, और हम जब से पैदा हुए तब से मंथन चल रहा है। ये रात ही समझो कि आसुर है, और दिन आपका दैव वृत्ति है, और रात दिन से ही छोटे बच्चे से लेके बुढ़ापे तक मंथन चल रहा है। यहां पर रस्सी है प्रारब्ध कर्म, उपनिषद में कहा है प्राण बंधन एव सौम्य मनः, ये जो जीवात्मा है प्राण बंधन वाला है, अपने प्रारब्ध कर्मों के बंधन से शरीर में है। तो प्रारब्ध कर्म की जो रस्सी है, विषमी वासनाएं कामनाएं हैं, उसके द्वारा आपका मंदराचल शरीर है, क्योंकि किसी मंत्र का या पौराणिक कथानक का तीन अर्थ होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो जो पुराण में कथा है वह तो आदि दैविक है, परंतु अध्यात्म में हम विचार करके देखें, ये दिन रात ही समझो कि आसुर और दैव है, इन दोनों के बीच में हमारा स्थूल शरीर जो अचल है, जड़ है, यही जो है मंदराचल है। और प्रारब्ध कर्म में जो वासनाएं कामनाएं हैं, इससे इसका मंथन चल रहा है। जब मंथन होता है तो अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक मतते मतते अंत में हम इतने थक जाते हैं, जैसे कि देवता भी थक गए, असुर भी थक गए, दोनों मूर्छित पड़ गए। ऐसे ही दिन रात रूपी इस दोनों पक्षों के द्वारा हमारा शरीर 100 वर्ष के पहले ही, हालांकि उपनिषद के अनुसार सामान्य आयु 100 वर्ष की बतलाई गई है, सदगुण समाह, परंतु सदगुण समाह उसके लिए है जो जीवन में सत्कर्म करता हो। अथर्वेद का जो ईशावास्य का दूसरा मंत्र है, कुरुवन नेवे कर्माणि जी विशिष्ट सद्गुण समाह एवं त्वयि नान्यथैतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि आप अच्छी तरह से 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं तो सत्कर्म करते हुए जीवन यापन कर सकते हैं, परंतु काल के प्रभाव से 100 वर्ष तो क्या 50 पार करते करते ही बुढ़ापे के सारे लक्षण आ जाते हैं और हमारा शरीर इंद्रियां बिल्कुल मथ जाती हैं। और यदि आप समझकर मथेंगे तब तो नवनीत निकलेगा मक्खन, अन्यथा उल्टा होता है, पूरा दूध अपने शरीर पर आ जाता है। मथने का भी एक तरीका होता है। जिन माताओं ने बहनों ने कभी कभी मथा नहीं है उनको दे दो यदि मथने के लिए तो विपरीत हो जाता है। तो हम लोग भी ये जो काल है रात और दिन, इसके द्वारा प्रत्येक दिन मथित हो रहे हैं और अंत में शरीर इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती हैं कि आंख से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई भी नहीं पड़ता है और पैर से ठीक से चला भी नहीं जाता है। उस समय यदि आप सच्चे हृदय से भगवान विष्णु को पुकारें तो निश्चित ही भगवान चतुर्भुज से जब मथेंगे तो मंथन करने से इसी शरीर में जीवन नेव अस्मि नेव लोके अमृत का श्राव होगा। मरने के बाद किसने अमृत देखा है, परंतु भगवान भाष्यकार करते जीवन नेव, इसी जीवन में इसी शरीर से आप यदि ठीक से मंथन करें, भगवान पर समर्पित हो जाएं, तो निश्चित जीवन में अमृत का श्राव होता है। जब तक अहंकार होता है, जैसे कि देवताओं को अभिमान था, असुरों को अभिमान था कि हम बड़े पराक्रमी, बड़े तेजस्वी, बहुत बलवान है, तो अपने बल से उस मंदराचल के द्वारा मंथन तो करते रहे और मंथन से सारी चीजें मिली, उनको लक्ष्मी भी मिल गई, धन भी प्राप्त हुआ, कस्तुभ मणि भी मिली, साजबाज के जो सामान थे, हाथी घोड़ा ही मिला, गाड़ी भी मिल गई और बारूणी भी मिली, बारूणी शराब को बोलते हैं, वह भी उपलब्ध हुआ, सब पी के मस्त हो गए। इसके आगे भी मंथन जारी रहा, परंतु जब तक दोनों के मन में अभिमान था तब तक अमृत का आविर्भाव नहीं हुआ। जैसे दोनों बिल्कुल सिलेंडर बोल दिए, हाथ खड़ा कर दिए, अब हमारे बस की नहीं, अभिमान जब दोनों का समाप्त हो गया तब जाकर के भगवान विष्णु के सामर्थ्य तुरंत अमृत आविर्भूत हुआ। ऐसे ही हमारे जीवन में यह जो सीमित अहंकार है, अभिमान है कि अयम अहम अस्मि, यह मैं हूं, और यह अहंकार सबके मन में है, अत्यंत गरीब से गरीब हो या अमीर से भी अमीर हो, पंडित से भी महापंडित हो या महामूर्ख हो, सबके मन में अहंकार होता है। जैसे दर्पण के सामने कोई भी जाए, जो भी दर्पण के समक्ष जाता है वह अपने को संवार करके बहुत सुंदर समझता है, मैं बिल्कुल सबसे सुंदर हूं। कोई अपने कुरूप नहीं मानता है। जो काला कुल्टा व्यक्ति है वह भी दर्पण के सामने श्रृंगार कर लेता है अपने हिसाब से और सबसे अच्छा ही मानता है। दर्पण का स्वभाव है दर्पयति दर्पण, जो दर्प पैदा करे उसका नाम दर्पण है। दृप धातु अहंकार अर्थ में होता है, दृप धातु अभिमानी अभिमान अर्थ में है। अभी और मान दो शब्द है, अभी का अर्थ है सर्वतः और मान में मांग माने धातु है। मान बोलते परिमाण को, जैसे कि 5 किलो चावल है 10 किलो गेहूं है, तो सर्वत्र सभी तरफ से आप अपने शरीर के परिमाण को मान बैठते हैं कि बस मैं तो पुरुष ही हूं, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो नारी हूं। इस प्रकार के मान्यता विशेष का नाम है अभिमान। और यह अभिमान ये बिल्कुल समझो कि जैसे कि बिना सीमेंट के बालू से दीवार बना दें वैसा ही है। जरा सी हवा आई तुरंत बालू की दीवार गिर जाती है, ऐसे अभिमान है। परंतु मनुष्य जब तक अभिमान पाले रखता है तब तक अमृत की उपलब्धि नहीं हो सकती। सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा परंतु जो आपके जीवन का लक्ष्य है अमृत शांति, उसकी उपलब्धि असंभव है। ये जो आख्यायिकाएं होती है इसका तात्पर्य होता है सुख पूर्वक उस आत्मा का साक्षात्कार करना। भगवान शंकराचार्य बार बार कहते हैं सुख प्रतिपत्यर्था आख्यायिका भवंती। कहानियों के द्वारा कथा के द्वारा उसी दुर्गम तत्व को सुख पूर्वक बताया जाता है। तो यहां पर जो देवासुर संग्राम है इसके द्वारा मनुष्य के जीवन को चित्रित किया कि हम अपने पुरुषार्थ से शारीरिक बल से ऐन्द्रिक बल से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं पर शांति नहीं मिल सकती। हम भले ही शांति के संसाधन को एकत्रित कर लें, मकान बना लें, धन कमा लें, पद में प्रतिष्ठित हो जाए, मान सम्मान को प्राप्त कर लें, फिर भी जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति, अशेष दुखों से छुटकारा पाना, यह नहीं मिल पाता है। इसके लिए तो पूर्ण रूप से समर्पण की आवश्यकता होती है। तो यहां पर भी अकांड ब्रह्मांड छह चक्र देवासुर कृपा, जब असमय में कोई अघटित घटना घटती है तो मनुष्य को परेशानी हो जाती है। असमय मतलब बिना समय के। एक महात्मा जी किसी के घर आए, अचानक जब पधारे तो बड़ा ही अच्छे ढंग से भक्त ने स्वागत किया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद आरती उतार कर दक्षिणा दे के विदाई किया, कहा महाराज कुछ आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी बहुत खुश हुए और आशीर्वाद दिए कि जा तेरा दादा मरे, तेरा बाप मरे, है ना, कि तेरा बेटा मरे, तेरा पोता मरे। आशीर्वाद दे के चलने लगे। अब सब परेशान, बोले कि महाराज जी हमने सेवा में कोई गलती तो नहीं हो गई, आप आशीर्वाद दे रहे कि श्राप दे रहे। महात्मा जी बोले देख भाई आशीर्वाद है श्राप नहीं। बोले क्यों? बोले अकांड ब्रह्मांड छह न हो इसलिए हमने ऐसा से बात दिया। असमय में दादा जीते रहे, बाप जीते रहे या तू न मर जाए, इसलिए हमने कहा मौत तो तेरे घर में आनी है पर अकाल मृत्यु नहीं होगी। पहले तेरे दादा पर दादा का शरीर छूटेगा, इसके बाद तेरे पिता का, इसके बाद तेरा, इसके बाद तेरे अपने पुत्रों का। तो देखो संतों के वचन बड़े जो है ना व्यंग्यात्मक होते हैं। और यदि मान लो दादा जीते हो, पिता जीते हो और पोता चल बसे तो कितनी तकलीफ होती है। तो यहां पर भी जो प्रलय का समय निर्धारित है 43,20,000 वर्ष 1000 का गुणा कर दो, उतने दिन के बाद महाप्रलय होना चाहिए, पर बीच में जब प्रलय होने लगा तो बेचारे देवता ही परेशान और आसुर भी परेशान। ऐसे ही हमारे जीवन में ये रात दिन रूपी दैवी वृत्ति आसुरी वृत्ति के द्वारा जो आपके शरीर रूपी मंदराचल का वासना रूपी रस्सी से जो मंथन चल रहा है, तो मंथन होगा तो निश्चित हलाल भी निकलेगा, ऐश्वर्य की उपलब्धि भी होगी, पर अमृत को पाना होगा तो भगवान की शरणागति बहुत जरूरी है। 14वां श्लोक। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेय शासीद्य त्रिनयन विषम संधितवत सकल्मास कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भय भंगव्यसनिनः। जब देवता और असुर दोनों असमय में ब्रह्मांड के नाश को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, उस समय भगवान शंकर कृपा करके हलाहल विष का पान किए। हमारे भी जीवन में जब हलाहल विष के समान ये दुख का जहर होता है, उसको केवल भगवान शंकर ही हजम कर सकते, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह अधिक दुख को सहन कर सके। जब बहुत अधिक दुख आता है तो या तो हार्ट अटैक हो जाता है या मूर्छित हो जाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो आप सामान्य दुख को तो सहन कर सकते हैं,